सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल की व्यापक तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद।
भारतीय रेल ने इन दिनों में, जो कि त्योहार का मौसम है पूरे देश भर में, दिवाली से लेकर छठ तक तैयारी चलती रहती है और पूरे देश में आवागमन रहती है, लोग अपने प्रियजनों के साथ फेस्टिवल मनाने जाते हैं। हम समझना चाहेंगे कि भारतीय रेल ने इस वर्ष बहुत विशेष तैयारी की है, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि लाखों लाखों पैसेंजर्स ट्रेन में सफर करते हैं और अक्सर इस तरह के भी सिचुएशन दिखती है कि जहां भीड़ के नियंत्रण को लेकर समस्या आती है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रिवेदी जी, जो कि जनरल मैनेजर रह चुके हैं भारतीय रेल के। सबसे पहले त्रिवेदी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इतनी व्यापक व्यवस्था के लिए कितनी तैयारी के साथ भारतीय रेल उतरी है, क्योंकि छठ एक बहुत बड़ा महोत्सव है और उसमें लाखों लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में अपने अपने घरों में पहुंचते हैं, तो आप थोड़ा सा हमें इस पर प्रकाश डालें।
भारतीय रेल के लिए कि छठ एक महाउत्सव से कम नहीं होता, वस्तुतः दुर्गा पूजा से ये सीजन हमारा शुरू होता है, फिर दिवाली और छठ तक रहता है और इसमें यात्रियों की संख्या, क्योंकि अभी देखा गया ये भारत में जो माइग्रेंट लेबर जिन्हें बोलते हैं, जो देश के खासकर पूर्वी हिस्सों से आते हैं और बम्बई, सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, अब तो दक्षिण के भी कई राज्य इसमें शामिल हैं, वहां से ये लोग, इनका एक सालाना अपना घर जाने के लिए एक मारामारी रहती थी और पिछले वर्षों में हमने देखा कि इस भीड़ की वजह से काफी हादसे भी हुए और कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटित हुई पिछले वर्षों में, लेकिन इस बार भारतीय रेल ने उन सबसे सीख कर एक बहुत ही व्यापक पैमाने पर प्रबंध किए हैं और इसमें क्यूइंग अरेंजमेंट, पहले स्टेशन में होल्ड एरिया नहीं रहता था, अब होल्ड एरिया भी होने लग गया है जिसमें कि सिर्फ पैसेंजर प्लेटफॉर्म में उन्हीं लोगों को छोड़ा जाता है जिनकी ट्रेन है। और आपको एक विशेष बताता हूँ कि इस बार उधना स्टेशन से एक दिन में, परसों में 4 बजे तक 36,000 यात्रियों ने प्रस्थान किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और पिछले साल के इसी समय की तुलना में करीब करीब 50% ज्यादा है। और इसमें जो रेलवे की समस्त एजेंसियां हैं, जैसे कि आरपीएफ, कमर्शियल डिपार्टमेंट, टीटी, टिकट चेकिंग, स्पेशल के टिकटिंग काउंटर्स, क्यू लगाने के स्पेशल क्यूइंग एरिया, वो बहुत ही व्यापक पैमाने पर इसका प्रबंध किया गया है और उस इस बार सुखद परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं।
त्रिवेदी जी, इससे पहले हम चर्चा आगे रखें, हम सुनना चाहते हैं दिलीप कुमार जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सूचना और पब्लिसिटी विभाग भारतीय रेल के, उन्होंने अपनी व्यवस्था के बारे में जो जानकारी दी।
यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजने के लिए पिछले फेस्टिवल के दौरान भारतीय रेल द्वारा 7,724 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया गया था। इस वर्ष हम लोगों ने 12,000 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई है और उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जो अधिसूचित ट्रेनें हैं इस मामले में वह 12,011 है और इसके अनुसार ही हम लोगों ने ट्रेनें चलाई हैं। यदि इस फेस्टिवल सीजन की बात करें तो शुरूआती 19 दिनों में 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने विशेष ट्रेनों का लाभ उठाते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान तक की यात्रा की है। यदि दिल्ली एरिया की मैं बात करूं तो दिवाली के ठीक 3-4 दिन पहले का जो समय रहा उसमें हमारे रेलवे के माध्यम से करीब 16 लाख यात्री जो है वो अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर गए हैं। जो स्ट्रेटजी हमने दीपावली के समय अपनाई है उसी स्ट्रेटजी को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं छठ के दौरान भी। हम लोग 3 स्तरों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिवीजन लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग जोन स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं रेलवे बोर्ड स्तर पर।
तिवारी जी, जैसे आपने सुना दिलीप कुमार जी को, तो जो वॉर रूम की जो बात की गई, जो रेल भवन में स्थापित किया रेलवे बोर्ड की तरफ में या जोनल में करीब 80 के ज्यादा है, तो सबसे पहले तो ये समझाएंगे जैसे आपने कहा होल्डिंग एरिया, ये एक नया महत्वपूर्ण जैसे के तरीका है। जैसे सुना है कि रेलवे कई सारे ऐसे स्टेशनों में इस तरह का प्रबंध कर रहा है, जैसे आपने कहा कि यात्री तभी छोड़े जाएंगे प्लेटफॉर्म पे जब उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली होगी, ना कि पहले वहां जाके जमावड़ा करें, क्योंकि ये शायद कुंभ के दौरान भी हमने इस तरह का प्रयास देखा था तो उसका परिणाम काफी सुखद रहा जैसे रिपोर्ट आती रही, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता पाए।
इसमें जैसे हमने देखा था कि एक हमने क्या किया इस बार रेलवे ने कि उन जगहों को चिन्हित किया जहां पर कि माइग्रेंट लेबर का कंसंट्रेशन है, जैसे कि उधना उसमें से एक है, अहमदाबाद दूसरा है, मुंबई तीसरा है, पुणे चौथा है, ऐसे पूरे भारतवर्ष में उन जगहों और दिल्ली के सैटेलाइट टाउन, तो उनको चिन्हित किया, उन स्पेशली उन जगहों को मॉनिटर किया और वहां पर बहुत व्यापक स्तर पर होल्ड अप एरिया और सीसीटीवी से कंटिन्यूस सर्विलेंस और उसमें एआई का भी यूज किया गया क्राउड मॉनिटरिंग के लिए। अच्छा, जो वार रूम थे वो भी दो तीन स्तर पे थे। एक वार रूम तो हमारे रेलवे में 24 घंटे चलता ही है, जिसको हम लोग कंट्रोल रूम बोलते हैं, हर मंडल मुख्यालय में होता है, हर जोनल रेलवे में होता है, बोर्ड रेलवे में होता है। उसके अलावा आरपीएफ के मॉनिटरिंग सेल्स हैं, जहां पर कि सीसीटीवी का जो सारा जो फुटेज है वो वहां से मॉनिटर किया जाता है, और किसी भी जो संदिग्ध गतिविधि दिखती है उस पर तुरंत कार्रवाई करने से का नतीजा यह हुआ है कि इस सीजन में, इस दौरान, इस 1 अक्टूबर से जो हमारा दुर्गा पूजा और दिवाली का जो सीजन शुरू हुआ है, अभी तक कोई खास बड़ी ऐसी दुविधा और असुविधा और कोई एक्सीडेंट भगदड़ टाइप की स्थिति एक भी रिपोर्ट नहीं की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
जी, एक जैसे आपने कहा कि जो चिन्हित किए गए रेलवे स्टेशन में विशेष प्रबंध किया गया, वहां पे जैसे यात्रियों को रुकने की स्थिति, पानी और टॉयलेट फैसिलिटीज के अलावा, सुना है एक वो स्पेशल मोबाइल अनरिजर्व टिकट सिस्टम का विकसित किया गया, ताकि सबसे ज्यादा भीड़ तो वहीं लगती है टिकटिंग काउंटर्स में, और वहीं भगदड़ या वहीं लोग धक्का मुक्की का एहसास करते हैं, और खासकर जैसे आपने कहा जो हमारे यहाँ माइग्रेंट्स हैं, जो पलायन करके अपने काम के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और वापस जब इस त्योहारों के लिए अपने घर पहुंचने की, तो टिकट व्यवस्था मतलब उस तरह के ज्यादा उनके पास ना तो साधन होते हैं, उस वक्त समय का अभाव होता है। ये जो प्रणाली जो विकसित की गई है, इसके ऊपर कुछ आप बता पाए?
हाँ, ये हमारा एक स्पेशल प्रणाली विकसित की गई। आप क्यों जानते होंगे, जो इस समय जो भीड़ होती है, इसमें अधिकतर ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं होता। जैसे हम लोग आम आदमी कर चलता है तो अपना पहले से 2-3 महीने पहले रिजर्वेशन करके चलता है, लेकिन क्योंकि इस पीरियड में इतनी, ये जैसे क्राउड सर्ज बोलते हैं, वो क्राउड का सर्ज इतना ज्यादा होता है कि जो रेगुलर ट्रेन में रिजर्व अकोमोडेशन होती है उसमें इन लोगों को नहीं समाया जा सकता। जो इन लोगों की जो रिजर्वेशन होता था उसको हम लोग रेलवे में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बोलते थे। इसके अलावा जो नया एक यूटीएस किया गया है, यूटीएस सिस्टम अनरिजर्व ट्रेवलर्स के लिए, वो उन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। यूटीएस और पीआरएस पहले अलग अलग काम करते थे, अब उसको उस सिस्टम को एक यूनिफाइड करके ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो स्पेशल काउंटर बना के इन लोगों को यूटीएस और पीआरएस के माध्यम से जो जो स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी होती है और जिनको टिकट मिल जाता है, ये वो यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सिस्टम से जो टिकट निकलता है उसको लेके इसमें बैठते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनका पहले से कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये अचानक से स्टेशन पर आ जाते हैं, तो इनको पहले थोड़ा होल्ड एरिया में रखते हैं, फिर टिकटिंग की लाइन में रखते हैं, फिर एक सेकंड होल्ड एरिया होता है जो जस्ट बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन होता है। इस तरह से इनको संचालित किया गया है और इसके बड़े सुखद परिणाम निकले हैं।
त्रिवेदी जी, एक चीज तो भारतीय रेल हम सब सफर करते हैं और बचपन से लेकर आज तक उसका अनुभव है सबको, व्यवस्था में एक बहुत समझ आती है कि जैसे लंबी दूरी की जो ट्रेन चलती है या ओवरनाइट जो ट्रेन चलती है 10-10, 12-12 घंटे, तो खाने पीने की व्यवस्था का भी रेलवे को ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में जगह जगह स्टेशन जो पड़ती है बीच बीच में, जहां पे पड़ाव पड़ता है, तो उसके लिए किस तरह का आप तैयारी करवाते हैं?
उसके लिए इस बार जो हमारी एक रेलवे बोर्ड की ही एक इकाई है, रेलवे मंत्रालय के अंडर में आती है, उसको IRCTC बोलते हैं। तो IRCTC के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए थे कि ये जो स्पेशल ट्रेन है, इनके जहां जहां पे ठहराव है, जहां जहां पर ये रुकेंगी, और कुछ स्पेशल पड़ाव, कुछ ऑपरेटिंग हॉल्ट्स होते हैं जो टेक्निकल हॉल्ट्स देने ही पड़ते हैं, उसके अलावा यात्रियों की सुविधा के अनुसार जो रस्ते के हॉल्ट्स होते हैं उसमें खाने पीने के बहुत स्पेशल प्रबंध किए गए और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, और इसके अलावा इन ट्रेनों की साफ सफाई की भी, क्योंकि ये इसमें बीमारियों का भी फैलने का डर रहता है, तो इसलिए खाना पीना और पानी के साथ साथ सफाई की भी, आपको तो पता ही होगा भारतीय रेलवे का एक अनूठा अचीवमेंट है इस दिशा में कि पहले जो हम लोग टॉयलेट यूज करते थे ट्रेन के अंदर, तो उसका जो मल होता था वो ट्रैक के ऊपर सीधा जाता था। अब जो हम लोगों ने बायो टॉयलेट का निर्माण किया है, जो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही विकसित किया गया है, जिससे कि वो सारा मल एक बैक्टीरिया के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है और वो सिर्फ जल निकलता है, तो उसकी वजह से एक हाइजीन का लेवल भी सभी ट्रेनों का बहुत ही उच्च स्तर का रहा है। तो खाना पीना आपने सुनिश्चित किया और हाइजीन सुनिश्चित किया, जिससे कि यात्री लोग एक स्वस्थ वातावरण में अपना पूरा जो रेलवे की जर्नी है, रेलवे का सफर है, उसको आनंद से पूरा कर सके।
तिवारी जी, आपने जो बात कही साफ सफाई रख रखाव का बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने लाखों लोग जो सफर कर रहे हैं, ट्रेन में खचाखच भीड़ रहती है, तो बहुत समस्या आती है लोगों के साथ। लेकिन साथ ही साथ कई अनुभव ऐसे आते हैं पुराने कि जो रिजर्व कोचेस हैं, जहां पे अनरिजर्व लोग, कई लोग जबरन घुसने की कोशिश करते थे क्योंकि पहले व्यवस्था नहीं होती थी, तो ये समस्या उसका कितना निदान कर पाई?
एक बार जब यात्रियों को इस बस एक बार सुनिश्चित हो गया कि उनको एक बार एक ट्रस्ट आ गया कि हमको बर्थ मिलेगी, हमें जाने के लिए सीट मिलेगी, तो जो उनकी एक टेंडेंसी रहती थी, जो उनके अंदर एक इच्छा रहती थी कि हमें, वो मान के चलते थे कि उन्हें सीट नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार जो ट्रेनों की संख्या दुगनी कर दी, जो पिछले साल जो जितनी ट्रेन चली थी स्पेशल ट्रेन, आज ऐसी स्थिति है कि बिहार और उस तरफ के पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पर छठ के लोग जाते हैं, तो उसमें हम लोग करीब करीब 300 ट्रेन डेली चला रहे हैं। तो आप सोचिए, एक ट्रेन में करीब करीब 1200 बर्थ होती है। तो जैसा कि अभी दिलीप कुमार जी ने भी बताया कि 1 करोड़ यात्री तो ऑलरेडी जा चुके हैं दिवाली से पहले तक। तो ये जो व्यवस्था है यह इतने बड़े पैमाने पर है कि इसमें किसी भी यात्री को यह संशय नहीं रहेगा कि उसको बैठने के लिए सीट या बर्थ नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो जो प्रयास करता है एक दूसरी ट्रेन में घुसने का, वो प्रयासों की मैं बहुत व्यापक स्तर पर कमी आई है।
एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि भगदड़ की जो स्थिति आती है वो, क्योंकि उसको नियंत्रण करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाई गई और तमाम सारी व्यवस्था होगी, तो पहले के जो इस तरह के दुखद घटनाएं घटी हैं उससे रेलवे ने किस तरह का अपने आप को इनोवेट किया इन चीजों के साथ, थोड़ा सा इस पर अगर प्रकाश डाल पाए।
इसमें सबसे पहला तो जो रेलवे ने इनोवेशन किया, जो पुरानी घटनाओं सीखा, एक पहले जो हमारे अरेंजमेंट होते थे वो यूनिफॉर्म टाइप के होते थे, उसमें फोकस एरियाज नहीं रहते थे, उन एरियाज को चिन्हित नहीं किया जाता था, जहां पर कि एक जनरल इंस्ट्रक्शंस रेलवे बोर्ड से इश्यू हो जाते थे कि नई स्पेशल ट्रेन चलानी है, अब कहां से ज्यादा चलानी है, कहां से कम चलानी है, किस स्टेशन में होल्डिंग एरिया की जरूरत रहेगी, किस एरिया में होल्डिंग एरिया की जरूरत नहीं रहेगी, कहां पर कितना बड़ा होल्डिंग एरिया लगेगा। और वो पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, पिछले जो हमारे साथ इस तरह के भीड़ भड़के में जो उपद्रव हुए थे, उन सबको एक सीख लेते हुए अब इस बार हम लोग अच्छी तरह प्रिपेयर थे कि हम उन जगहों पर ज्यादा फोकस करें जहां पर कि माइग्रेंट लेबर का कंसंट्रेशन है, और उस एरिया में हर स्टेशन में, बिकॉज ये संभव भी नहीं होता हर स्टेशन में बड़ा बड़ा होल्ड एरिया बनाया दिया जाए जहां पर कि उसका इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो ये जो एक फोकस्ड और चिन्हित करने की जो प्रणाली रही और उस रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूज हो पाया और संसाधन जो हमारे थे उनका एक सुनियोजित तरीके से पूरा उपयोग हुआ, और यात्रियों को इतना अच्छा लगा कि इस बार कोई भगदड़ की स्थिति पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
त्रिवेदी जी, आपने कुछ समय पहले कहा कि AI का इस्तेमाल हुआ, जो कि कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है जिसको हम कहते हैं, जो सूत्र है जो आपके व्यवस्था को, तो टेक्नोलॉजी भी काफी विकसित हुई है, तो दोनों का जो मिश्रण हुआ तो उसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ा इन सारे व्यवस्था को सुदृढ़ करने में।
AI के माध्यम से आजकल जो कुंभ में भी सरकार ने काफी अच्छी इसका उपयोग किया था, AI के माध्यम से जो एक भीड़ की जो काउंटिंग होती है कि अगर आप कहीं पर किसी स्टेशन में भीड़ है या किसी तरफ से लोग आ रहे हैं तो उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता था, सब लोग अपने अपने अंदाजे लगाते थे। AI के माध्यम से वो उसका आकलन कि कितने लोग इस स्टेशन पर आएंगे, कितने लोग उन रास्तों से गुजर रहे हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, और रेलवे स्टेशन का एक फोटो देख के, एक होल्डिंग एरिया का फोटो देख के AI कैलकुलेट कर सकती है कि ये इस एरिया में इतने लोग, उसके लिए फिजिकल काउंटिंग जो इस तरह की सिचुएशन होती है उसमें फिजिकल काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, तो उसमें AI के माध्यम से उसको और उसी के हिसाब से फिर ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो आपको अगर सही अंदाजा है कि कितने लोगों की आवश्यकता है तो उसके हिसाब से आप AI के माध्यम से आपने सुनिश्चित कर लिया कि संसाधन और जो मांग है दोनों में एक सामंजस्य बना दिया, तो उसके बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिले।
चर्चा खत्म करने से पहले एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि पिछले सरकार की तरफ से खास, रेलवे की तरफ से खास प्रयास हुआ था कि पुरानी जो वीडियो है, कुछ गलत सूचना प्रदान करने की, रेलवे में भीड़ दिखाने की जो व्यवस्था थी उसके पर सरकार ने इस बार थोड़ा कार्रवाई भी की है, तो इससे भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ अंकुश लगा इन चीजों में?
जो डीप फेक का जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि हम डीप फेक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनफैक्ट मैंने देखा कुछ इस बार कुछ हमारे न्यूज़पेपर्स ने भी, मैंने तो दैनिक भास्कर में देखा कि उसमें एक जगह था कि उनका स्पेशल सेक्शन है उनके ऑनलाइन संस्करण में कि डीप फेक कौन से, और कई ऐसी साइट्स आ गई हैं जिसमें कि आप फोटो को डाल के आप पता लगा सकते हैं कि ये फेक है कि जेन्युइन न्यूज़ है। तो उसका भी सामाजिक तत्व थे जो इस तरह की घटनाओं को एक भड़काऊ प्रयास करते थे, उनके ऊपर काफी बड़ा अंकुश लगा है।
त्रिवेदी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल की व्यापक तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में